नमस्ते और आप सभी का स्वागत है आज के सायंकालीन संस्करण में। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमने जयपुर डायलॉग्स के माध्यम से बहुत पॉपुलर किया था एक शब्द, उसका नाम है पंचमकार। यानी जो पंचमकार हमारे तंत्र में हुआ करते थे उस पर हमने बनाया पंचमकार। बनाया तो ओरिजिनली संदीप देव जी ने था, लेकिन पॉपुलर करने का काम संजय जयपुर डायलॉग्स ने किया। और उन पंच मक्कारों में से एक मक्कार है मीडिया। बाकी तो आप जानते हैं, मार्क्सिस्ट, मिशनरी, मैकॉले पुत्र, और एक है इसमें से मीडिया। और आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के मक्कारों पर। और उसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर विक्रम सिंह जी। आप पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के और इस समय नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं। सर, आपका स्वागत है एक बार पुनः जयपुर डायलॉग्स पर।
बड़ी कृपा संजय जी, आपने फिर मौका दिया सेवा का। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रासंगिक प्रश्न है जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कि जनता को जागरूक करें कि इनके माया जाल, इनके मिथ्या भाषण में ना आए।
तो हमने जैसा अभी मैंने उल्लेख किया कि हम इनको पांच मक्कारों में रखते हैं मीडिया को, तो ये पंच मक्कार में से एक मक्कार है। पंच मक्कार जैसे मैंने अभी कहा, उसमें मार्क्सिस्ट हैं, मिशनरी हैं और मैकॉले पुत्र हैं।
जी हाँ, जी हाँ।
और मैकॉले पुत्र के साथ में फिर ये मीडिया हैं। तो ये मीडिया के जो पंचमक्कार हैं, हम अपने भारतवर्षी जो हैं उनको तो हम जानते हैं लेफ्टिस्ट मीडिया, लेकिन संभवतः जनता ये कम जानती है कि ग्लोबल मीडिया में भी लेफ्ट का एक तरह से वर्चस्व है और उनका जो एक बहुत ही इसको कहें फेवरेट जो उनका पास टाइम है वो ये है कि भारत को, भारतीयता को, भारतीय संस्कृति को किसी न किसी तरह से नीचा दिखाते रहे, उसके ऊपर आक्षेप लगाते रहे और उसको रॉन्ग बॉक्स में खड़ा करते रहे। आप क्या सोचते हैं
संजय जी? आपने बहुत अच्छी इनको संज्ञा दी है, मक्कार, पंच मक्कार। लेकिन जो पाश्चात्य मीडियम है, जो ग्लोबल मीडिया, अगर इनको मक्कार शिरोमणि कहें तो अतिशयोक्ति न होगा। क्यों नहीं होगा? वो इसलिए कि अगर आप देखें, नाम बड़े दर्शन ठोटे, और अगर इनको देखें, इनके धनबल, धनबल देखें और किस तरीके की इनका जो ग्लैमर कोशेंट है, उसके बाद अगर आप देखेंगे कि अगर आप इनका नाम लेना शुरू कर दें तो लोग बिल्कुल बेकरारी के साथ रहते कि काश मेरा नाम इनके प्रकाशन में आ जाए, मैं इनके शोज में आ जाऊं। कदाचित आप इनके शोज में कई बार गए होंगे, मैं भी, मुझे भी कह लें कि अवसर मिला है इनके शोज में जाने का। लेकिन अगर पूरी भावभंगिमा, जिसका कि अगर आप थोड़ा सा अनुसंधान करेंगे तो आप देखेंगे इनका बैकग्राउंड क्या है। और सबसे पहला प्रश्न जो आपसे ये पूछेंगे, इस विषय के ऊपर हम चिंतन कर रहे हैं, आपकी इसमें अवधारणा क्या है, तो आपकी विचारधारा क्या है और क्या वक्तव्य आप देंगे, उसका ट्रेलर ये पहले देख लेना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि बेहतर ये होगा आइंदा कोशिश करें कि इनके मंच पे ना जाएं, और अगर जाएं तो ये बिल्कुल व्यक्त ना करें। मेरा परामर्श होगा विद्वान वक्ताओं को जो जाना चाहते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हम बताएं कि मैं परिचित तो हूं लेकिन मैं क्या कहूंगा, ये आपके प्रश्नों पर निर्धारित रहेगा। इस पर निर्भर करेगा कि आप किस प्रकार के प्रश्न करेंगे, किस प्रकार से अपने शब्दों का चयन करेंगे। और आप अगर कालांतर में देखें, मैंने कुछ नमूने आपके पास भेजे हैं, और नमूने आप देखें तो प्रश्न जैसे कि होशियार वकील कोर्ट में जैसे सवाल करता है कि जिरह के वक्त वही प्रश्न, वही शब्द आपके मुंह में डाल देगा जो वो चाहता है कि आप उसका वमन करें। और जैसे ही आपने उनकी इच्छानुसार वक्तव्य नहीं दिया तो आपकी बात ऐसे काट देंगे कि जो कि शालीनता की परी तो छोड़ दीजिए, बिल्कुल सरासर बदतमीजी और दुराग्रह के ऊपर ये कहा जा सकता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका भी यही अनुभव होगा कि वो एक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के आते हैं। और अगर आप प्रोग्राम की श्रृंखला देख लें, पूरी श्रृंखला में अगर आप देख लें तो उनको शेरशाह, अकबर और इस तरीके के राजाओं के अलावा उन्हें न मौर्य में, न चोला में, न विजयनगर में, न नंदवंश में, न अहोम में, न काकातिया में, न मराठों में कोई उन्हें गुण दिखाई नहीं पड़ता है। वो एक सूत्री कार्यक्रम, बहादुर शाह जफर की मौत कैसे हुई, उनके बेचारे बेटों की हत्या कैसे की गई, मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिनको कोई भी बड़ाई मराठों में न दिखाई पड़े, सूरजमल में न दिखाई पड़े, जिनको महाराणा प्रताप में न दिखाई पड़े, जिनको राजपूत वंशों में न दिखाई पड़े, तो ये सोचना पड़ेगा कि आप मुगलों की आपका कोई संबंध है या मुगलों ने आपके नाम पे कोई वसीयत की है, केवल मुगलिया बातें कर रहे हैं। आपने शेरशाह को महिमा मंडित कर दिया, नाम दिया आपने हेमू का, और आपने बड़ाई की बैराम खां और अकबर की, मैंने वो भी आपके साथ शेयर किया है। आपने सरासर जी शीर्षक तो दिया आपने हेमू का, लेकिन बड़ाई आपने सरासर उनकी की, बैराम खां और अकबर की। अरे भाई सीधे कह दीजिए कि आपको इनके अलावा, मुगलों के अलावा कोई चीज पसंद नहीं आ रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज की कोई आपको अच्छाई दिखाई नहीं पड़ रही है। महाराणा प्रताप, राणा सांगा की कोई आपको बड़ाई, आपको कोई अच्छाई दिखाई नहीं पड़ रही है। आपकी मानसिक दासता और मानसिक दिवालियापन इसी से स्पष्ट हो जाता है कि आपका एक नैरेटिव है, उसके अनुरूप आप बात कर रहे हैं। ये तो हुई एक बात। अब एक मैंने आपको और भेजा है कि साहब ये जो गाने चल रहे हैं आजकल, इससे बड़ी हिंसा भड़क रही है और जो माइनॉरिटी है वो बहुत डरी हुई है। जो गला कटा है उदयपुर में, अमरावती में, और जो धमकी, उसके बारे में सबके मुंह में दही जमा है संजय जी, उससे
म्यूजिक से हेट, ये है क्या है, हिंदू नेशन मुस्लिम्स के प्रति म्यूजिक से हेट फैलाने की कोशिश,
हेट फैलाई जा रही है, और गला काटने में प्रेम संबंध बढ़ रहे हैं। गला काटने की जो धमकी दी जा रही है उससे प्रेमालाप हो रहा है, प्रेम संवाद बढ़ रहा है और उदारता की अश्रुधारा बह रही है। आप ये देखें कि एक तरफा किस तरीके का इनको कौन सा प्रलोभन है, कौन से इनके आकर्षण हैं कि गला काटने के बारे में एक भी बात नहीं, लोन वुल्फ अटैक के बारे में एक भी बात नहीं, जबरन धर्म परिवर्तन के बारे में कोई घटनाक्रम नहीं, पटना में पीएफआई की जो गिरफ्तारियां बरामदगी हुई उसके ऊपर एक शब्द नहीं। संजय जी क्या यह संभव नहीं कि जरा इनकी भी सेंसरिंग कर ले कि आपकी अगर एक साल के 24 महीने के जिस प्रकार के आपने प्रोग्राम किए हैं, इन्होंने केवल एक तरफा पूरी कार्रवाई की है। अब आ जाए अल जजीरा के ऊपर, केवल मुस्लिमों के मकान ढहाए गए। आप निकाल करके देख लीजिए, जो भी मकान ढहाए गए हैं वो गुण दोष के आधार पर सभी उन संप्रदाय के, जात धर्म के, जिन्होंने कानून की लक्ष्मण रेखा को पार किया, उनके मकान ढहाए गए हैं। ये कह देना कि केवल एक मजहब के, और जिस प्रोग्राम के आप कि मैंने आपको लिंक भेजा है, आप ये देखिए किस प्रकार शब्द डालने की कोशिश की गई। इनकी गेस्ट लिस्ट आप देख ले संजय जी, इनकी गेस्ट लिस्ट भी वैसी ही है जिनको कि पूरे भारत में, विश्व में जाने जाते हैं एक तरफा वार्ता करने वाले और एक तरफा वक्तव्य देने वाले। इनमें ऐसा कोई भी नहीं है इनकी गेस्ट लिस्ट में जिसको क्या कह सकते हैं कि उदार दृष्टिकोण का है, इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट है। इनकी गेस्ट लिस्ट में भी उसी प्रकार के लोग आते हैं जो कि एक तरफा बात करते हैं। और मकान ढहाने की तो बात इन्होंने भी कर ली, गला काटने की तो बात अल जजीरा ने भी नहीं की। अल जजीरा ने भी ये नहीं कहा कि पीएफआई और इनकी एक्टिविटीज क्या है, लोन वुल्फ अटैक के बारे में इन्होंने नहीं कहा, जबरन धर्म परिवर्तन के बारे में नहीं कहा, नाना प्रकार के जिहाद के जो स्वरूप आ रहे हैं संजय जी, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की। ये सब क्या दिखाता है संजय जी, एक प्रायोजित कार्यक्रम, सुनियोजित कार्यक्रम और रोड मैप के तहत, सुनियोजित रोड मैप के तहत, और इस रोड मैप के तहत इनकी गेस्ट लिस्ट, इनकी तैयारी। आप याद करें जब कभी आप इन चैनल्स पे गए होंगे, अब तो मैंने खैर जाना बंद ही कर दिया करीब करीब, लेकिन ये पहले आपसे पूछ लेंगे कि आप इसके बारे में आपका विचार क्या है, आपका पूर्वाभ्यास भी कराएंगे, जैसे आप दर्जा दो के विद्यार्थी हैं, आपका पूर्वाभ्यास भी कराएंगे। पूर्वाभ्यास के बाद पूछेंगे कि हाँ साहब आप जरा ये अगर मेरा प्रश्न इसका उत्तर एक बार दे दें। तो ये एक तरीके से ये ऐसा रिहर्सल, और रिहर्सल के दौरान ये आपके वक्तव्य को रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, जो कि तथा कथित रिहर्सल होता है। उस रिहर्सल के दौरान जो वक्तव्य आपने दिया वो रिकॉर्ड करिए, भाई रिहर्सल में तो आपने ये कहा था, अब प्रोग्राम के दौरान आप जो है बिल्कुल ऑलराउंडर हो गए हैं, आपने तो दिशा और दशा दोनों बदल दी डिबेट की। तो मेरा परामर्श होगा आपको भी, एक तो कोशिश करें कि इनके प्रोग्राम में जाने से कोई बहुत ज्यादा लाभ मुझे दिखाई नहीं पड़ता है, बल्कि हानि ही दिखाई पड़ती है।
वैसे तो मैं बताऊं आपको, अल जजीरा का जहां तक प्रश्न है, वो जो उनका एंकर है मेहंदी आर हसन, तो ट्विटर पे मैंने उसकी इतनी खाल उधेड़ी कि उसने मुझे ब्लॉक कर रखा है। तो अल जजीरा पे तो मुझे कभी बुलाया नहीं जाएगा, ये बिल्कुल निश्चित है
जी।
और यही काम मैंने बीबीसी के साथ भी काफी कुछ कर रखा है, उनके कुछ गुने चुने जो एंकर हैं वो जिस तरह से वो करते थे। एक बार उन्होंने तारिक फतेह को बुलाया अपने स्टूडियो में और उसके बाद फिर उनसे एक तरह से बदतमीजी सीखी, तो उसको लेके मैंने ट्विटर पे काफी इनका जिसको कहते हैं कि मजम्मत की या इनकी मुखालफत की या इनका मजाक उड़ाया। तो उसके बाद से बीबीसी भी जो है वो, तो मैं इनके यहाँ से तो ब्लैक लिस्टेड हूँ पहले से, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी ये लोग बुलाएंगे। हाँ, और लोग कभी कभी बुलाते रहते हैं, वैसे अभी कुछ होते हैं जैसे न्यूज़ लॉन्ड्री वाले ने मुझसे पूछा कि मैं आपसे वार्ता करना चाहता हूँ किस बारे में, कि आपने कॉल दी है बायकॉट की लाल सिंह चड्ढा और तो इसकी आपने क्यों दी। तो मैंने कहा मैं न्यूज़ लॉन्ड्री को क्रेडिबल प्लेटफॉर्म ही नहीं मानता, मैं आपसे क्या बात करूँगा। और ये मैंने कहा कि ये जो आपने जो मुझे चैट भेजा है इसको तो मैं अब यूज़ करूँगा, अगर आपने कुछ भी मेरे हवाले से लिखा। तो पता चला उनका आर्टिकल और उनका कोई वीडियो आया ही नहीं, उन्होंने लगता अबॉर्ट कर दिया, उन्होंने कहा पता नहीं क्या ये पीछे पड़ जाए।
ये देखिए एक नमूना है, ये एक नमूना आपके सामने है और एक नमूने के हैं, एक ढूंढिए हजार मिलेंगे संजय जी। बहरहाल सारी दुनिया संजय जी को भी जानती है, सारी दुनिया जयपुर डायलॉग्स को भी जानती है और सारी दुनिया इन सबको भी जानती है कि एक तरफा एजेंडा लेकर के जो ये चल रहे हैं और जिस तरीके के ये प्रोग्राम भेज रहे हैं इससे क्या, यही तो मैंने आपसे निवेदन किया। आपने अगर जरा सा भी अगर दिमागी या जरा सा भी अंतर आत्मा की आवाज होती तो इस तरीके के बेबुनियाद उल जलूल आप प्रोग्राम न बनाते। और ये देख लीजिए किस तरीके से महिमा मंडित कर रहे हैं जिहादियों को, और इनको कोई प्रोग्राम लॉर्ड कर्जन के बारे में, लॉर्ड वेवल के बारे में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में नहीं मिला। लॉर्ड मेयो की 1873 में एक जिहादी ने जो कत्ल कर दिया था उसके बारे में, उसके नाम देखे पठान शेर अली अफरीदी। तो सलमान रश्दी को ले लीजिए और इनको ले लीजिए, ये चाहते हैं कि तारतम्य बन जाए कि हमने 1873 में भी वाइस रॉय को नहीं छोड़ा और सलमान रश्दी को भी नहीं छोड़ा। तो इस तरीके के भ्रामक और इस तरीके की सांप्रदायिक बातें करने वाले ये प्लेटफॉर्म्स हैं। इसकी अगर आप ये देखें काला पानी में जब पठान ने अंग्रेज वाइस रॉय की हत्या, ये क्या दिखाता, ये चवन्नी छाप नौटंकी जो बनाते हैं, चवन्नी छाप नौटंकी ये स्तर और ये जो शब्द ज्ञान का ये प्रदर्शन कर रहे हैं ये देख लीजिए। और कुछ आपको नहीं मिला,
बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने की कहानी
और आपको नहीं मिला,
बहादुर शाह जफर जिसकी पूरी सल्तनत जो थी वो लाल किले के बाहर चांदनी चौक,
लाल किले में, और पूरी फौज जो थी वो बृहन्नलाओं की थी, उनकी पूरी सेना ही बृहन्नलाओं की थी, और उसके बारे में आप जो है प्रोग्राम निकाल रहे हैं
उसको गिरफ्तार करने में, वो तो वैसे भी मराठों के अंदर
वो तो वही चला था, बिल्कुल मराठों के बिल्कुल उसमें था, वो तो बिल्कुल सब्जेक्ट ही था मराठों का। अब तो आप ये तमाम चीजें देख ले, ये म्यूजिक से हेट कैसे फैल रहा है। तो संजय जी आपने बिल्कुल सही कहा, जिन लोगों का आपने नाम लिया वो वैसे भी डिस्क्रेडिट, उनकी जो विश्वसनीयता है बहुत ही निम्न कोटि की है, वहां नहीं गए तो आपने तो दरअसल उनके ऊपर उपकार ही किया क्योंकि उनको तो पब्लिसिटी मिल गई कि संजय जी ने मना कर दिया। लेकिन संजय जी का वो नहीं, जो कद है वो इतना विराट है कि संजय जी इन चैनलों पे अब जाने के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है क्योंकि इनका कद बहुत छोटा हो चुका है इन चैनलों के आगे, इनका बौद्धिक भ्रष्टाचार वो सर्वविदित है।
इसके साथ में एक जो है इससे भी अधिक जो चिंताजनक बात है जो हमें स्वयं में देखनी पड़ेगी, और ये है कि जो हमारा जो सम्भ्रांत वर्ग है वो पता नहीं क्यों इनसे बहुत अधिक न केवल प्रेरित रहता है बल्कि लगभग एक तरह से उनके उनसे भयभीत रहता है, इन awe ऑफ देम, उनसे बिल्कुल उनको उनके awe में रहता है। ये जो एक मानसिक दास्ता है इसका क्या उपाय है, क्यों ये लोग न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट में जो लिखता है उसके ऊपर प्रतिक्रिया करने की ये आवश्यकता यहाँ क्यों है, करना है तो हमारा फॉरेन ऑफिस वहाँ अमेरिका में करे, उनको टेकअप करे, हमारे यहाँ क्योंकि अरे आज टाइम ने ये कह दिया, इकोनॉमिस्ट ने ये कह दिया, NYT ने ये कह दिया, वॉशिंगटन पोस्ट ने ये कह दिया, अरे भाई कह दिया होगा, मुझे तो बड़ा अजीब सा लगता है, ये मानसिक दास्ता से निकलने का क्या उपाय है।
आपने सही कहा, एक तो इनके बारे में जो मानसिक दास्ता, क्योंकि ये अंग्रेजियत से परिपूर्ण है। आपने कहा मैं भयाक्रांत या डर नहीं कहूंगा, ओवर ऑड, इनका ग्लैमर कोशेंट, इनकी जो महिमा मंडित करने की जो उपसंस्कृति है, जो हमारे यहां एक है कि जो पाश्चात्य देश जो कह दे वो अंतिम वाक्य है, वो सर्वश्रेष्ठ है। अमेरिका से जो कोई आए कि अगर कोई भी चीज भारत में प्रासंगिक करनी है तो इट शुड कम वाया द वेस्ट, पश्चिम की ओर से अगर आएगा तो वो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएंगी। अगर योग बाबा रामदेव ने आज जो है पैकेज करके दे दिया, लेकिन वही अगर अमेरिका के जरिए ना आया होता तो हम लोग दकियानूसी चीजें, बिल्कुल कुछ इसका कोई लाभ नहीं है। लेकिन भला हो बाबा रामदेव का और भला हो रामकृष्ण मिशन का कि भले ही उन्होंने अंग्रेजी और पाश्चात्य जगत का लाभ उठा करके उस प्लेटफॉर्म से उसको लोकप्रिय किया, लेकिन आज वॉशिंगटन पोस्ट को ले लीजिए, न्यूयॉर्क टाइम्स को ले लीजिए, आप बीबीसी को ले लीजिए, ये तमाम वो मंच है, अल जजीरा को ले लीजिए, ये वो प्लेटफॉर्म्स है कि इससे हम भयाक्रांत नहीं कहेंगे, भयभीत नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि वी आर ओवरवेल्म्ड, हम लोग इनसे बहुत ज्यादा मानसिक रूप से कुप्रभावित हैं। और मानसिक रूप से कुप्रभावित होने का कारण क्या है? ग्लैमर कोशेंट, इनके साथ जो ग्लैमर है, इनकी जो अंग्रेजियत है, इनके एंकर्स हैं, इनकी अंग्रेजी की जो स्टाइल है, इनकी अंग्रेजी का जो सिंटेक्स और ग्रामर है, आप अगर उसको देख लेंगे, अब आप इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण क्या शीर्षक हो सकता है, इससे ज्यादा अविद्वतापूर्ण शीर्षक क्या हो सकता है। लेकिन मैं सबको जानता हूं, आदरणीय पुरुषोत्तम अग्रवाल जी बड़े सम्मानित और बड़े श्रेष्ठ विचारक हैं, लेकिन
जेएनयू के हैं ना तो श्रेष्ठ ही होंगे।
आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप ऐसे वक्ताओं को ला करके, ऐसी चीजें ला करके शोकेस कर देना, क्या भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो सकता है? और क्या ये मंच है बीबीसी का कि इस तरीके के विषयों के ऊपर वाद विवाद और परिचर्चा करे? ये परिचर्चा सामान्यतः संजय जी अगर होती, अगर कह दे कि ये इस चीज से परिचर्चा हुई तो कहां हुई, अगर आपसे मैं पूछता कि एक पहेली है तो आप यही कहते, ये साहब प्रयागराज या काशी के आरएसएस कार्यालय में ये परिचर्चा हुई, कौन कहेगा कि बीबीसी में हुई है और डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ऐसे विद्वान के साथ हुई है? लेकिन हुई है, बीबीसी के मंच पे हुई है, इसलिए ये विश्वसनीय होने के साथ साथ इस पे ग्लैमर कोशेंट भी आया है और लोगों को दिखाती है कि कदाचित कहीं ना कहीं इसका सहानुभूत पूर्वक इसका चिंतन अभिजात्य वर्ग में भी हो रहा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें भी हो रहा है, और इसलिए ये चिंता का विषय है। वास्तविकता ये है संजय जी, इसकी न कोई चर्चा कभी थी न है और न आगे कभी होगी, और जहां कोई चर्चा होती है ये मान के चलिए कि उसके ऊपर इंटेलिजेंस की जांच पहले बैठ जाती है, बाद में उसके ऊपर कभी कोई चर्चा आ होती है, कोई चर्चा करके दिखा दे और उसके बाद ये मान के चलिए लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की एक फाइल जरूर खुल जाएगी, और कुछ तो होना नहीं है।
दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि वे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं डॉक्टर विक्रम सिंह से। वैसे लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की बात करें तो मुझको तो कई बार इस विषय पे बुलाया गया।
जी,
क्या कि आपकी क्या भारत हिंदू राष्ट्र हो सकता, मुझे याद है बहुत समय पहले, लगभग तीन और चार वर्ष पहले, उसके बाद से ये सब्जेक्ट पॉपुलर हो गया। वो ये था कि भाई किसने कहा था, हमारे शशि थरूर साहब ने कहा, डू यू वॉन्ट टू बिकम हिंदू पाकिस्तान, तो उसके ऊपर एक चर्चा किसी ने रखी हिंदू पाकिस्तान के, तो फिर मैं उसमें गया और मैंने उसको डील किया संगम टॉक्स,
अब इसी बात
संगम, बात संगम, करता संगम टॉक्स में हुआ, और मैंने उसका कंक्लूजन ये दिया पूरी पूरा विश्लेषण करके कि हिंदू पाकिस्तान इज अ डैम गुड आइडिया। उसका आप खाली उसका कंक्लूजन सुनेंगे तो हो सकता है आपको कुछ अन्यथा लगे, लेकिन वो पूरा विश्लेषण करके हमने दिया कि भाई व्हाट इज पाकिस्तान, पाकिस्तान इज बेसिकली व्हाट इज कॉल्ड अ पायस कंट्री, और जिसको कह सकते हैं कि भाई पाक जिसको बोलते हैं भाई गुड कंट्री, तो अगर वो मुस्लिम पाकिस्तान है, अगर वो मुस्लिम पाकिस्तान है तो वो मुस्लिम फंडामेंटल्स पे आधारित है, देयरफॉर इट इज बैड। हिंदू पाकिस्तान होगा तो वो हिंदू फंडामेंटल्स पे आधारित होगा, देयरफॉर इट विल बी गुड, सो हिंदू पाकिस्तान इज अ डैम गुड आइडिया। उसको लेके बड़ा हंगामा हुआ कि साहब ये कोई आईएएस ऑफिसर, उस टाइम आई वाज इन सर्विस, ये इस तरह से कह रहा है। मैं कहा हाँ बात कर लो ना भाई, पहले ये देखो आप हमारे लॉजिक तो देखो, हम क्या लॉजिक दे रहे हैं। अभी मुझको बुलाया किसी ने कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र हो सकता है, मैं हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही है, हिंदू राज्य हो सकता है कि नहीं इस पर बात करो, अब पुरुषोत्तम अग्रवाल के सामने हमको आपको तो बुलाते नहीं है
भाई, नहीं बुलाएंगे, सामने बुलाएंगे।
आमने सामने रखे तब तो बात बने।
बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आपने बात बिल्कुल सही कही है
अग्रवाल जी को।
जी, तो उनका फिर तर्कपूर्ण उत्तर भी दिया जाएगा, पूरे सम्मान के साथ दिया जाएगा, उनकी आयु का लिहाज करते हुए और उनके पद और प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हुए, क्योंकि हिंदुस्तान है इसीलिए इंडिया और भारत है, क्योंकि जो सेक्युलर क्रेडेंशियल्स है, क्योंकि हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र है, इसलिए है, क्योंकि स्वीकार सबको करना, हम सबके हैं, सब हमारे हैं, इसीलिए हिंदुस्तान है और भारत का जो कंसेप्ट है वो मौजूद है। जहां जहां शरिया लागू है वहां तो कोई अगर बोल करके देख ले, मालूम पड़ जाएगा कि वास्तविकता क्या है और कल्पना क्या है।
बिल्कुल सही बात है। मैं तो कई पूछता हूँ भाई, हिंदू राष्ट्र में प्रॉब्लम क्या है? आफ्टर ऑल हिंदू राष्ट्र में या सनातन धर्म में तो जिम्मी का कॉन्सेप्ट है नहीं
ना।
हम तो जजिया मांगते नहीं किसी से, हम तो सबको बराबर का अधिकार देते हैं, तो हिंदू राष्ट्र में किसी को समस्या क्या है?
सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम तो सबके सुख की कामना करते हैं। जी, हम तो सबके सुख की कामना करते हैं। कोई ऐसी परिभाषा या ऐसा वर्गीकरण नहीं कौन जिम्मी है, कौन किसके खिलाफ जिहाद करना है, सबके लिए समभाव रखना, यही सनातन धर्म का मूल मंत्र है।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक अभी ये भी देखने में आया था पहले, कुछ दिनों पहले, ये नूपुर शर्मा वाले प्रकरण में हमने देखा होगा कि भारत जो था वो अचानक कतर के सामने झुक गया, और उसमें भी ऐसा बाद में ज्ञात हुआ कि वो अल जजीरा ने इसको बहुत कस के चलाया, क्योंकि वो हमारे मिस्टर वो जो जुबैर है, जो अपने आप को जुबैर या चिड़ियाघर का भालू कहते हैं, तो उनके बड़े संबंध हैं, तो उन्होंने सोशल मीडिया पे अरब देशों में चलवा दिया, अल जजीरा ने उसको अल्लाह कर दिया, तो हमारी सरकार झुक गई तुरंत और न केवल एक्शन ले लिया बल्कि और भी बहुत सारी बातें ऐसी कह दी जो नहीं कह देनी कहनी चाहिए थी। तो ये दिखाता है कि ये दासत्व जो है न केवल हमारे संभ्रांत वर्ग में है अपितु हमारी सरकार में अभी भी विद्यमान है।
नहीं होना चाहिए। अमेरिका में जो कातिलाना हमला हुआ उसकी भर्सना ये लोग करेंगे, अल जजीरा करेंगे इसकी भर्सना, और उसके ऊपर की इसको सजाए मौत मिलनी चाहिए, क्या उसके बारे में कोई किसी तरीके की आवाज उठेगी? या जिस तरीके के आक्रमण, जिस तरीके की विध्वंसात्मक कार्रवाई हो रही है, जिहाद की ऊपर कार्रवाई हो रही है, गला काटने की बातें की जा रही है, क्या उसकी निंदा भर्सना उसके ऊपर कार्रवाई होगी? नहीं होगी। जाहिर है ये एक तरफा नैरेटिव संजय जी इसीलिए बनाया जा रहा है कि जिससे कि लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो और जिसे कहा जाए कि उनके लिए सात खून माफ है, और यहां पर अगर आपने अपने अधिकारों की भी बात की, अपने हिफाजत की भी बात की, वो अस्वीकार्य है और अक्षम्य है।
एक नैरेटिव बनाया जाता है इस्लामोफोबिया का
जी,
और ये पूरे विश्व में इस तरह की मांग उठती है, यूनाइटेड नेशंस में इसका रेजोल्यूशन लिया जा चुका है इस्लामोफोबिया के विरुद्ध। फोबिया का मतलब होता है इर्रेशनल फियर, क्या जो इस्लाम का जो फियर है वो इर्रेशनल है?
ये रिलीजन ऑफ पीस सबसे बड़ा भ्रम और सबसे बड़ा झूठ, धूर्तता से परिपूर्ण ये है रिलीजन ऑफ पीस। अगर किसी के दामन पर खून के सबसे ज्यादा धब्बे अगर हैं तो ये अपना अंतर मंथन कर ले। दूसरी चीज, जिस तरीके से पूरे विश्व में लोन वुल्फ अटैक से लेकर के जो आक्रमण और फिदाइन हमले हुए हैं, अगर इनके अलावा किसी और ने, ये तो क्लोज सेकंड भी कोई नहीं आएगा जितना इनके ऊपर मानव रक्त बहाने का, इनके ऊपर जो दोषारोपण मैं नहीं कर रहा हूं, जो अगर हिसाब किताब किया जाए जिसकी जिम्मेदारी इनकी है, तो मैं समझता हूं वो फोबिया नहीं, वो वास्तविक कॉज ऑफ कंसर्न है। इसके ऊपर चिंतन होना चाहिए कि इसके आखिर आखिर रोड मैप क्या है, क्या इसी तरीके से मानव रक्त बहता रहेगा और हम इसको इस्लामोफोबिया या किसी अन्य इस तरीके के टर्म में डाल करके इसको कालीन के नीचे डाल देंगे? नहीं, इसके ऊपर चिंतन होना चाहिए, क्योंकि समय आ गया है हिसाब करने का। हिसाब इसलिए कि शांत प्रिय लोगों को भी शांति से अपने जीवन यापन करने का अधिकार है, जिस तरीके से सबको है, इसी तरह कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको भी यही अधिकार है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपने और अपने परिवार का जीवन यापन करें, और जो भी इसमें व्यवधान करता है उसके बारे में केवल भारत को ही नहीं संजय जी, पूरे विश्व को एक निर्णय लेना होगा।
जी, दर्शकों से फिर से अनुरोध है कि कृपया आप अपने प्रश्न जो भी पूछना चाहें, वह हर प्रकार के आज के विषय से संबंधित आप डॉक्टर विक्रम सिंह जी से पूछ सकते हैं। अब इसको आगे बढ़ाते हुए, जो विशेषकर जो प्रिंट मीडिया है, अंतर्राष्ट्रीय प्रिंट मीडिया है, वो लगभग पूरी तरह से जो लेफ्ट का नैरेटिव है उसको ही सपोर्ट करता है। आप यूके में एग्जांपल देख लीजिए, द गार्जियन, द इकोनॉमिस्ट, और जो मैंने अब न्यूयॉर्क टाइम्स, और इनकी तो बात पहले कर ही ली,
की जा चुकी है। जी हाँ,
की जा चुकी है। अब भारत ने भी एक, मैं कहूँ कि आज भी जो लेफ्ट का नैरेटिव है, आज भी उन्होंने उस गंगाधर अधिकारी डॉक्ट्रिन का खंडन नहीं किया या उसको डिसोन नहीं किया, जिसके अंतर्गत सीपीआई ने 1942 में भारत के 17 टुकड़े मांगे थे। वो आज भी, मैं अभी कई सारे चैनल्स पे जब भी ये लेफ्टिस्ट वाले मेरे सामने आते हैं तो सबसे पहले मैं उनसे यही पूछता हूँ कि हैव यू डिसोन्ड द गंगाधर अधिकारी डॉक्ट्रिन, तो वो तुरंत, उनका तो एक्सपर्टीज है दाएं बाएं करने में, जवाब नहीं देते, दाएं बाएं हो जाते हैं। तो ऐसी एक विचारधारा को जो आज भी ऑफिशियली उस डॉक्ट्रिन को ओन करती है जो भारत के 17 टुकड़े करना चाहता है, उसके प्रति और उसके जो मेंटर्स हैं बाहर बैठे हुए, उनके प्रति हम इतनी सहिष्णुता क्यों रखते हैं?
फिर मैं कहूंगा कि जो फंडिंग और जिस तरीके से हमारे लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके अपने एजेंडा को आगे बढ़ाना, फिर उसके बाद उन्हीं को नीचे दिखाना और उसी के माध्यम से हमारे राज्य सत्ता को कमजोर करना, ये अगर इन लोगों ने इसमें महारत हासिल की है। आखिर अगर आप इस पे गौर करें, संजय जी की 17 टुकड़े करके इनको क्या हासिल होता है? कि जो साम्यवाद के सबसे बड़े स्तंभ थे तब तक कालीन यूएसएसआर, अब तो यूएसएसआर खत्म हो गया, चीन, उसके सामने कोई बड़ी शक्ति न इकट्ठा हो जो लोकतांत्रिक हो। जनरल मॉन्टगोमरी ने कहा था कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा स्तंभ विश्व में भारत है और भारत को लोकतांत्रिक देशों का साथ देना है। तो उस मजबूत स्तंभ के 17 टुकड़े करने का अगर कार्य योजना साम्यवादियों ने बनाई तो इसमें अप्रत्याशित क्या है और इसमें आश्चर्यजनक क्या है? ये इनकी रणनीति और रोडमैप के तहत यही था कि जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसके 17 टुकड़े कर दो, कुछ को और तोड़ दो, कुछ को खरीद लो, कुछ को नेस्तनाबूद कर लो और कुछ पे कब्जा कर लो। ये सारा प्रोग्राम जो चरमपंथियों का था, नक्सलवादियों का था, जो रेड कॉरिडोर बनाने की बात थी संजय जी, वो सिर्फ इसीलिए थी, खाद्य और खनिज पदार्थ पे कब्जा कर लो और रेड कॉरिडोर के माध्यम से। और आप ये भी देखें, जहां कहीं इस तरीके की बात आती है तो ग्लैमर कोशेंट, फिल्म स्टार, सिने तारिकाएं और इस तरीके की जो अब मैं कहना नहीं चाहूंगा, वो थोड़ी अशोभनीय हो जाएगी, लेकिन ऐसे जिनकी चर्चा हम एक सभ्य समाज में नहीं करते, इस प्रकार की सिने तारिकाएं और इस प्रकार की सिने जगत के हीरो हीरोइंस आ करके इनकी दर्शन को महिमा मंडित करते, खुद सामंतवाद में आकंठ डूबे हुए हैं, लेकिन साम्यवाद को प्रासंगिक और फेस्टिवल बनाने में इनका भी बड़ा योगदान है।
आपने सिने तारिकाओं की बात बिल्कुल ऐसे समय पर की जिस समय कि पूरा भारतीय समाज जो है इनके विरुद्ध एक तरह से उठ खड़ा हुआ है।
जी जी, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए।
जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये जो सामंतवादी जो है, जिसको कहें, इनको एक नया टर्म बनाया जा सकता है कि सामंत साम्यवादी जो है, तो ये जो सामंत साम्यवादी है, इनकी इनके चंगुल में, इनके चक्कर में आने के लिए अब जनता तैयार नहीं है।
अब तैयार नहीं
है। लगातार जिस प्रकार से इन्होंने भारतीय संस्कृति का उपहास, आज से नहीं बिल्कुल पिछले 30-40-50 वर्ष से, पहले तो ये छद्म रूप में करते थे, अब खुले रूप में उसके बाद करने लगे पिछले 20-30 वर्ष से, लेकिन अब जो है वो उनकी चल ही नहीं रही है। और आप देखिए कि किस तरह से रो पीट रहे हैं और किस तरह से कह रहे हैं कि साहब भारत असहिष्णु हो गया है।
इनके जो प्रायोजक है उनको जब मुंह की खानी पड़ी, जिसको कहते चारों खाने नहीं आठों खाने, जब ये चित हो गए तब इनको एहसास हुआ आखिर ये हुआ क्या। इन्होंने दरअसल संजय जी सोते शेर को जगा दिया। इनको खुद ये अपेक्षा नहीं थी कि इसका ऐसा माकूल प्रत्युत्तर मिलेगा कि इनका सबका दिवाला निकलने वाला है, और दिवाला निकलना भी चाहिए। खाएं भारत की और बात करें कि ये इसमें जो है इनको अब ये भयाक्रांत है, तो भयाक्रांत है तो अफगानिस्तान जाएं, सीरिया जाएं, कतर जाएं, वहां जाएं, वहां जाएंगे नहीं, बांसुरी और हारमोनियम तो यहां बजाएंगे, पैसा यहां कमाएंगे और असुरक्षित भी अनुभव करेंगे। ये दोहरे मापदंड नहीं चलने वाले हैं, जनता समझ गई और इसका दुष्परिणाम कि सोते हुए शेर को जगाया है तो अब नतीजे भी भुगतने के लिए तैयार रहे।
बिल्कुल, आपने बहुत ही जिसको कहें कि संक्षेप में इनके पूरे के पूरे नैरेटिव को एक तरह से ध्वस्त कर दिया। तो आइए अब हम प्रश्नों को ले लेते हैं, उससे पहले दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया आप हमें इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, हमें सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट भी करें। आइए प्रश्नों पर।